हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 377। दूसरी तरफ आदित्य का विला। सुनैना हॉल के काउच पर बेहोश लेटी हुई है और डॉक्टर ने अभी अभी उसे एक इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चली गई है और बाकी सब भी काफी अफसोस और पछतावे के साथ सुनैना की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन आदित्य की आंखों में आंसू है और वो सुनैना का हाथ थामकर उसके सिराने ही बैठा हुआ है और बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी तरफ देख रहा है। उसकी ऐसी हालत को समझते हुए डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप इस तरह से खुद को दोष मत दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल है। अगर आप लोग उन्हें याद दिलाने की कोशिश नहीं भी करते, फिर भी उन्हें इस तरह से एंग्जाइटी अटैक आ सकता है, क्योंकि वो खुद भी इस बारे में सोच सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर भी आदित्य कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अभी भी सुनैना की तरफ ही देख रहा है। लेकिन तभी नैना ने आगे आते हुए एकदम भरी हुई आवाज़ में बोला, लेकिन डॉक्टर, हमें शायद उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है और हमारे कहने की वजह से ही उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की। क्या सच में ऐसा करना सही है? क्योंकि हम सभी ऐसा नहीं करना चाहते थे। नैना ने डॉक्टर से सवाल किया और बाकी सब भी जवाब के इंतज़ार में डॉक्टर की तरफ ही देख रहे हैं। स्वीटी, अरुण और नैना तीनों ही, साथ ही गीता भी वहाँ पर साइड में चुपचाप ही खड़ी हुई है और अब तक रवि भी वहाँ पर आ गया है, जो कि आदित्य के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हुआ है। जिन लोगों को भी सुनैना के एक्सीडेंट और उसकी बीमारी के बारे में अब तक पता है, वो सब लोग ही वहाँ पर हैं और सभी सुनैना, आदित्य दोनों के लिए ही परेशान हैं, क्योंकि वो सब उन दोनों को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे हैं। खासकर आदित्य को, क्योंकि आदित्य को तो ऐसी कोई चोट भी नहीं आई है, सिर्फ सुनैना को तकलीफ में देखकर ही उसने अपनी हालत बिगाड़ कर रखी हुई है। तभी डॉक्टर ने आगे आकर नैना की बात का जवाब देते हुए कहा, ट्रस्ट मी, मैं एक न्यूरोसर्जन और ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, इस शहर का सबसे फेमस और सक्सेसफुल डॉक्टर। मेरी की हुई सर्जरी आज तक फेम नहीं हुई है, इसीलिए मैंने जितना भी स्टडीज में पढ़ा है और जितना भी एक्सपीरियंस किया है, इस हिसाब से यही सबसे बेस्ट रास्ता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाए। लेकिन डॉक्टर, इससे तो दी को तकलीफ हो रही है और हम में से कोई भी उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इस बार अरुण बोला। अच्छा, तो फिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? कि आप उन्हें इस तरह याद दिलाने की कोशिश ना करें तो क्या उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और वो सब कुछ भूल जाएंगी? और आखिर आप लोग कब तक झूठ में उनका साथ दे पाएंगे? क्योंकि उनकी मेमोरी एक जगह पर स्टेबल नहीं है। उन्हें कभी किसी टाइम का याद रहेगा तो कभी किसी वक्त का। वो अपनी लाइफ में बीते हुए किसी भी टाइम में पहुँच सकती हैं, जिसका एकमात्र इलाज आप लोगों के साथ से ही पॉसिबल है, डॉक्टर ने फिर से उन सब की तरफ देखकर समझाते हुए कहा। आदित्य बहुत ही ध्यान से वो सब कुछ सुन रहा है, लेकिन अब तक उसने बीच में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डॉक्टर की बातें समझ आ रही हैं। तभी नैना ने अपने मन में चल रहा एक और सवाल डॉक्टर से पूछा, लेकिन डॉक्टर, अगर इन सब में सोनू की पूरी मेमोरी लॉस हो गई और उसे कुछ भी याद नहीं रहा, तो फिर हम उसे कैसे सब कुछ याद दिलाएंगे? क्या तब उसकी सारी मेमोरी वापस लाना पॉसिबल होगा? और ऐसा क्यों हो रहा है? इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है क्या? नैना की बात पर आदित्य ने एकदम से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो ये बात सपने में भी नहीं सोच सकता कि सुनैना सब कुछ भूल जाए। उनके बीच बीते हुए इतने खूबसूरत पल, इतनी इमोशनल यादें और जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में शामिल हुए, वो सब कुछ आदित्य के लिए बहुत मायने रखता है और कहीं ना कहीं सुनैना के लिए भी। और अगर वो सब कुछ भूल भी जाएगी तो सिर्फ दिमाग से, उसके दिल से तो आदित्य कभी नहीं निकल सकता, जिससे वो बहुत बेचैन रहेगी और आदित्य ऐसा नहीं चाहता। नैना ने आदित्य के गुस्से भरी नजरें खुद पर नोटिस की तो उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, मेरे मन में आया ये सवाल। तो आदित्य ने उस वक्त नैना को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आप सबकी चिंता जायज है, क्योंकि आप सब पेशेंट से प्यार करते हैं और उनका भला चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग उन्हें पूरी तरह ठीक होते देखना चाहते हैं तो आपको उन्हें लगातार सारी चीजें याद दिलानी होंगी, और हो सकता है अभी उन्हें खुद भी सब याद आ जाए, लेकिन नहीं आया तो हमें उन पर शॉक ट्रीटमेंट अप्लाई करना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमेशा ही काम करता है। सुनैना को शॉक ट्रीटमेंट देने की बात सुनते ही उन सभी की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई और आदित्य इतनी देर में पहली बार तुरंत ही मना करते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी सोना के साथ। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं डॉक्टर? वो कोई पागल नहीं है जो आप उसे शॉक ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर ने आगे आकर आदित्य की तरफ देखकर बोला, शॉक ट्रीटमेंट सिर्फ पागलों का ही इलाज नहीं करता है, ये ब्रेन सिस्टम को ठीक करने में भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मुझे पता था मिस्टर सिंघानिया कि आप इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि इन बीते कुछ दिनों में ही मैंने देखा है कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं खुद भी वो ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इन सब से कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो फिर हमारे पास वही लास्ट ऑप्शन बचेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप लोग जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए, इनकी दवाई और हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। इसके अलावा जैसे ही अगर वो कुछ भी भूलती हैं तो उसे उन्हें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, इस बारे में सोचे बिना कि उनके दिमाग पर जोर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। वो सारी यादें उनके दिमाग में ही कहीं ना कहीं स्टोर हैं, जो कि उन्हें बस याद दिलाने की ज़रूरत है। वो सब धुंधली पड़ गई हैं, लेकिन ये चोट इतनी गहरी नहीं थी कि वो सारी यादें उनके दिमाग से निकल जाए। इसीलिए आप सब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर ने इस बार जो कुछ भी कहा वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ आया और उन सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया। और कुछ देर के बाद मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन आदित्य और रवि को समझाने के बाद डॉक्टर कहाँ से चले गए। रवि उन्हें बाहर तक छोड़ने आया और फिर उसके बाद वो भी वापस अंदर आ गया। तब उसने देखा कि नैना, अरुण, आदित्य सभी एकदम सीरियस होकर बैठे हुए हैं और स्वीटी अरुण आपस में धीमी आवाज़ में कुछ बात कर रहे थे, जो कि उनमें से किसी को भी सुनाई नहीं दी। तभी नैना का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से अक्षत का फ़ोन था, क्योंकि आज उन दोनों ने अपनी एक सीक्रेट स्पेशल डेट प्लान की थी, दो तीन दिन पहले ही। लेकिन फिलहाल नैना सुनैना को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इस बारे में वो बिल्कुल ही भूल गई। नैना ने जैसे ही कॉल रिसीव की, उसे दूसरी तरफ से अक्षत की एकदम शिकायत भरी आवाज़ आई। कहाँ हो नैना तुम? अब तक वापस नहीं आई? इतना टाइम हो गया, तुम अभी तक सुनैना के घर पर ही हो क्या? और वो अब ठीक तो है ना? अक्षत ने पहले तो थोड़ी सी शिकायत की, लेकिन फिर बाद में समझदारी दिखाते हुए उसने नैना और सुनैना दोनों के ही हालचाल के बारे में पूछा। अक्षत का सवाल सुनकर नैना ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए सुनैना की तरफ देखा, जो कि अभी भी बेहोश थी, और आदित्य पहले की ही तरह उसका हाथ थामे हुए उसके सिराने बैठा है और काफी कुछ सोचता हुआ वो बेहोश सुनैना तरफ ही देख रहा है।
अपने सामने ये सीन देखकर नैना को समझ नहीं आया कि वो अक्षत से क्या कहे, सच या झूठ। इसलिए वो थोड़ा सा सोचती हुई बोली, हाँ हाँ, अभी मैं यहाँ पर ही हूँ और सब कुछ, सब तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है सुनैना, अभी बाकी मैं आकर बताती हूँ। नैना ने इतना ही कहा, क्योंकि आदित्य के सामने वो ऐसा कुछ भी कॉल पर नहीं बोलना चाहती जो कि सुनने में अच्छा ना लगे और उनमें से कोई भी डिस्टर्ब हो। इसलिए उसने घर जाकर ही इस बारे में अक्षत से बात करने की सोची। अक्षत भी उसकी सिचुएशन समझता है और वो समझ गया कि ज़रूर वहाँ पर नैना सबके बीच होगी, इसलिए ही इस तरह से बोल रही है। लेकिन फिर भी उसे ये सोचकर बुरा लगा कि नैना को डेट के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। तो उसने कहा, घर क्यों आओगी? तुम्हें याद नहीं है क्या कि हमें कहीं और मिलना था आज, या फिर अभी काफ़ी टाइम लगेगा तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ? अक्षत ने उसे इनडायरेक्टली इस बारे में याद दिलाते हुए कहा। तो उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हुए नैना बोली, कहीं और आना था लेकिन कहाँ पर? अक्षत, हम तो आजकल बाहर कहीं पर भी नहीं मिलते ना? नैना ने बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा। तो अक्षत ने कहा, हाँ बाहर तो नहीं मिलते, इसलिए बाहर नहीं, मैंने हमारा प्राइवेट डेटिंग रूम बुक किया है, वो भी आदित्य के ही होटल में, और वहाँ पर मुझे VIP एक्सेस मिला है। मैंने इस बारे में बताया था, तुम भूल गई क्या आज हमारी डेट है, हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी की? अक्षत बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हुए ये बात बोला। तो नैना को एकदम से ही इस बारे में याद आया और वो बोली, नहीं नहीं मुझे याद है, मुझे सच में याद ही था, बस अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। अच्छा ठीक है, मैं बस आती हूँ कुछ ही देर में। नैना ने इतना कहा तो अक्षत समझ गया कि वो भूल गई थी और अभी बस वो बहाना बना रही है। लेकिन फिर भी उसने फ़ोन पर उससे ज़्यादा बहस नहीं की और कहा, ठीक है आधे घंटे में आ जाना, उससे ज़्यादा लेट मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुक पाऊँगा और हो सकता है रागिनी मुझ पर नज़र रखे हो या फिर उसके लोग वहाँ पर भी आ सकते हैं। आई होप तुम इस बात को याद रखोगी नैना। अक्षत की ये बात सुनकर नैना ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊँगी, यू डोंट वरी एंड लव यू। ये बात उसने थोड़ी धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन फिर भी स्वीटी और अरुण ने तो सुन ही लिया क्योंकि वो दोनों नैना के करीब ही बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही नैना ने उन दोनों को अपनी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए पाया, उसने तुरंत ही बाय बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर अपनी जगह से उठकर आदित्य की तरफ आते हुए बोली, आदित्य प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो, इस वक्त सुनैना को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है और अगर तुम ही इस तरह से बिहेव करोगे उसे ऐसे देखकर, तो फिर उसे कौन संभालेगा और कौन उसे पहले की तरह एकदम ठीक कर पाएगा? क्रमशः